नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, नीट यूजी प्रवेश परीक्षा को नए सिरे से आयोजित करने की अनुमति देने के लिए ठोस आधार जरूरी, सुनवाई जारी। न्यायमूर्ति नोंगमई कापम कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने गजा पट्टी में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया, बंधकों को बिना शर्त रिहा करने का आग्रह। ओमान तट के निकट पलटे तेल टैंकर के शेष लापता चालक दल के सदस्यों की तलाश जारी। बांग्लादेश में आरक्षण सुधार आंदोलन ने आरक्षण व्यवस्था में सुधार की अपनी मांग पर जोर देने के लिए पूरे देश में बंद का आह्वान किया। और टेनिस में भारत के सुमित नागल पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना के मारियानो नवोन से खेलेंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट की दोबारा परीक्षा ठोस आधार पर होनी चाहिए और इससे पूरी परीक्षा की शुचिता प्रभावित होगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की नेतृत्व वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने आज नीट यूजी 2024 मेडिकल प्रवेश परीक्षा के संचालन में हुई कथित अनियमितताओं से संबंधित 40 से अधिक याचिकाओं की सुनवाई शुरू की। जांच के मुद्दे पर पीठ ने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की जांच जारी है। सीबीआई ने जो कुछ भी कहा है, अगर इसका खुलासा होता है तो इससे जांच प्रभावित होगी और लोग इससे बचने के तरीके ढूंढेंगे। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायाधीश जेडी पारदीवाला तथा मनोज मिश्रा की एक पीठ ने सामाजिक सरोकार के मद्देनजर नीट यूजी 2024 की विवादित मेडिकल प्रवेश परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर निर्णायक सुनवाई की शुरुआत की। पीठ ने 5 मई की परीक्षा में कथित अनियमितताओं को रद्द करने, दोबारा परीक्षा करवाने और न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वे ये प्रमाणित करें कि पेपर लीक प्रणालीगत थी और इसने पूरी परीक्षा को प्रभावित किया है, इसलिए इसे रद्द करना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले के दायर अपने हलफनामे में केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा था कि बड़े पैमाने पर गोपनीयता के खुलासे के किसी भी सबूत के अभाव में परीक्षा को रद्द करना अनुचित होगा और लाखों योग्य उम्मीदवार को ये गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। इससे पहले न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने यह भी कहा था कि परीक्षा की शुचिता से छेड़छाड़ की गई है। पीठ ने कहा कि परीक्षा रद्द करने का निर्णय अंतिम विकल्प होगा। इस बीच नीट यूजी प्रवेश परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के 4 छात्रों को हिरासत में लिया है। एम्स पटना के कार्यकारी निदेशक डॉ जी के पॉल ने कहा कि जिन छात्रों को हिरासत में लिया गया है वे एमबीबीएस पाठ्यक्रम के दूसरे और तीसरे वर्ष के हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने इन छात्रों के लैपटॉप भी जब्त कर लिए हैं और उनके कमरे सील कर दिए गए हैं। इन छात्रों से सीबीआई पूछताछ कर रही है। न्यायमूर्ति नोंगमई कापम कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन ने आज सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने दोनों न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। इससे पहले न्यायमूर्ति नोंगमई कापम कोटेश्वर सिंह जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और न्यायमूर्ति आर महादेवन मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के पहले वर्ष से 75 महत्वपूर्ण भाषणों का संकलन विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 1 का विमोचन आज नई दिल्ली में किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ई पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उपस्थित रहेंगे। ये संकलन प्रकाशन विभाग ने हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि राजनीतिक फायदे के लिए कुछ पार्टियों द्वारा हिंसा और हत्या जैसे शब्दों का प्रयोग करना निराशाजनक है। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में श्री त्रिवेदी ने पूर्व आईपीएस अधिकारी के लेख का जिक्र किया जिसमें नकारात्मक माहौल और सुरक्षा गतिविधियों तथा इनके देश में प्रभाव की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हाल ही के हमले से स्थिति की गंभीरता का पता चलता है।
सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि हिंसा और हत्या जैसे शब्दों का प्रयोग, किसी के प्रति आक्रमण, मारना पीटना, कब्र खुदेगी जैसे शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। मैं सभी दलों से यह आग्रह करता हूं, विशेषकर कांग्रेस पार्टी से, कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आपके मन में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, मगर उस कुंठा को हिंसा और मौत जैसे शब्दों तक ले जाने से बचिए।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsoneair पर भी उपलब्ध हैं।
साइबर अपराधियों से सावधान, शेयर मार्केट से तुरंत पैसे बढ़ाने, घर बैठे पैसे कमाने जैसे लालच देकर, या फिर नकली पुलिस, सीबीआई, कस्टम अधिकारी बनकर, सिम या बिजली बंद होने की धमकी देकर, या फिर अनजाने नंबरों से वीडियो कॉल करके साइबर अपराधी आपको शिकार बनाते हैं। सतर्क रहें, शिकार होने पर तुरंत कॉल करें 1930 पर, या फिर शिकायत दर्ज कराएं www.cybercrime.gov.in पर। अधिक जानकारी के लिए फॉलो करें हमारे सोशल मीडिया हैंडल साइबर दोस्त को।
गृह मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने गजा पट्टी में तत्काल और पूर्ण संघर्ष विराम के अपने आह्वान को दोहराया है। भारत ने बिना किसी शर्त बंधकों की रिहाई का भी आह्वान किया है। बुधवार को पश्चिम एशिया पर एक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के उप प्रतिनिधि आर रविन्द्र ने कहा कि कई वर्षों तक विभिन्न तरह से फलस्तीन को दी गई विकास सहायता संबंधी धनराशि लगभग 120 मिलियन अमरीकी डॉलर है।
We reiterate the call for an immediate, full and complete ceasefire, safe, timely and sustained humanitarian assistance and unrestricted access to relief and essential humanitarian services in the Gaza Strip. India stands for peace and stability in the region.
वॉशिंगटन की दूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि परिषद की मांग किए जाने के लगभग 4 महीने बाद गजा में तत्काल संघर्ष विराम लागू करने के लिए हो रही वार्ता में प्रगति हुई है। ओमान समुद्री सुरक्षा केंद्र ने तलाश अभियान के प्रयास तेज कर दिए हैं। जहाज के चालक दल में 13 भारतीय और 3 श्रीलंका के नागरिक थे। अब तक 10 सदस्यों के बारे में जानकारी मिली है, जिनमें 9 जीवित हैं और 1 की मृत्यु हो गई है। जीवित 9 व्यक्तियों में 8 भारतीय और 1 श्रीलंका का नागरिक है। 6 अन्य सदस्यों के लिए तलाश अभियान जारी है। भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तलवार श्रेणी के युद्धपोत INS तेग को 15 जुलाई को तलाश और बचाव अभियान में सहयोग के लिए लगाया गया। युद्धपोत ने 16 जुलाई की सुबह तेल टैंकर का पता लगाया। भारत ने अभियान में एक बोइंग P-8I लंबी दूरी का समुद्री निगरानी विमान भी तैनात किया है। जहाज के पलटने के कारणों का भी पता नहीं चला है। तलाश अभियान जारी है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने ओमान में भारतीय राजदूत अमित नारंग से दुर्घटनाग्रस्त जहाज MV प्रिस्टे फाल्कन की ताजा स्थिति के बारे में जानकारी ली। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राज्य मंत्री ने कहा कि एक भारतीय का पार्थिव शरीर भी मिल गया है। राज्य मंत्री ने कहा कि स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और सरकार हर संभव सहायता कर रही है। उन्होंने बचाव अभियान में जुटे भारत और ओमान के सभी अधिकारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। बांग्लादेश में आरक्षण सुधार आंदोलन की समन्वय समिति ने आज आरक्षण व्यवस्था में सुधार की अपनी मांग और छात्र प्रदर्शनकारियों पर हुए हमले के विरोध में बंद का आह्वान किया है। विश्वविद्यालयों के छात्र और शिक्षक 1 जुलाई से सरकारी नौकरियों में आरक्षण सुधार की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को देशभर में रोजगार में आरक्षण के विरूद्ध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सत्तारूढ़ पार्टी से संबंधित छात्र संगठनों के बीच हुई झड़प में 6 विद्यार्थियों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समन्वय समिति ने अस्पताल और अन्य आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर बांग्लादेश में राष्ट्रव्यापी बंद की घोषणा की है।
कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए देश भर में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की 229 टुकड़ियां तैनात की गई है। आज सुबह ढाका में हुई झड़पों में एक युवक की मौत हो गई। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल ही में हुई दुर्घटनाओं की न्यायिक जांच की घोषणा की है, जिसमें चल रहे आंदोलन के दौरान 6 लोगों की जान चली गई। संयुक्त राष्ट्र ने भी सरकार से किसी भी तरह की धमकी या हिंसा से प्रदर्शनकारी छात्रों की रक्षा करने का आग्रह किया है। छात्रों की सुरक्षा के लिए सभी स्कूल, सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालय और अन्य संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। नवल संघ परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में भारतीय समुदाय और विद्यार्थियों से यात्रा से बचने और अपने घरों में रहने को कहा है। बांग्लादेश में जारी घटनाक्रम को देखते हुए ढाका में भारतीय उच्चायोग ने परामर्श में लोगों से कहा है कि किसी भी आपात स्थिति और सहायता के लिए उच्चायोग तथा सहायक उच्चायोग के आपातकालीन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। ढाका उच्चायोग का आपातकालीन नंबर है 880-19-37-400-591। विदेश सचिव विक्रम मिश्री कल से भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। विदेश सचिव का पद संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। इस दौरान श्री मिश्री भूटान के राजा से मुलाकात करेंगे। विदेश सचिव भूटान के प्रधानमंत्री, विदेश मामलों और विदेश व्यापार मंत्री अपने भूटानी समकक्ष वरिष्ठ अधिकारियों से भी मिलेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के कोविड-19 से संक्रमित होने से उन पर राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से हटने का दबाव बढ़ गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रभावशाली नेता और कैलिफोर्निया के प्रतिनिधि एडम शिफ ने सार्वजनिक रूप से श्री बाइडेन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी छोड़ने के लिए कहा है। 5 नवंबर को होने वाले चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का सामना राष्ट्रपति जो बाइडेन और जेडी वेंस का मुकाबला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से होगा। जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के गांव में आज तड़के आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 2 जवान घायल हो गए। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि कस्तीगढ़ इलाके के जद्दन बाटा गांव में आतंकवादियों द्वारा सरकारी स्कूल में स्थापित अस्थायी सुरक्षा शिविर पर गोलीबारी शुरू की गई। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों पक्षों के बीच 1 घंटे से अधिक समय तक गोलीबारी जारी रही। इसमें 2 सैनिकों को मामूली चोटें आईं। सोमवार और मंगलवार रात को आतंकवादी हमले में 1 कैप्टन सहित 4 सैनिक कर्मियों की हत्या के बाद डेसा और आसपास के वन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तलाश अभियान शुरू किया गया था। वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ धाम में सावन के प्रत्येक सोमवार को स्पर्श दर्शन और सभी प्रकार के दैनिक पास निरस्त रहेंगे। सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलेगा। काशी विश्वनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए दर्शन, पूजन और सुरक्षा को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। स्वीडिश ओपन टेनिस में भारत के सुमित नागल प्री क्वार्टर फाइनल में अब से कुछ देर बाद अर्जेंटीना के मारियानो नवोने के साथ खेलेंगे। राफेल नडाल लगातार जीतकर डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। नडाल और उनके जोड़ीदार कैस्पर रूड ने फ्रांस के थियो अरेबेग और रोम के सेफुलिन को 6-4, 3-6, 12-10 से मात दी। सिंगल्स के दूसरे दौर में राफेल नडाल आज ब्रिटेन के कैमरॉन नोरी के साथ खेलेंगे। जर्मनी में हैमबर्ग ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पहले दौर में आज शाम भारत के रोहन बोपन्ना और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी का सामना जर्मनी के जैकब श्नाइटर और मार्क वाल्नर से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मैच में भारत के विजय सुंदर प्रशांत और जीवन नेदुनचेझियन की जोड़ी का मुकाबला जर्मनी के टिम पुर्ज और केविन क्रैविट्स से होगा। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के अंकोला तालुक में शिरूर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर हुए भूस्खलन के मलबे को साफ करने में जुटे राहत दल ने आज 2 और शव बरामद किए हैं। इससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मूसलाधार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य चला रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नीट यूजी प्रवेश परीक्षा को नए सिरे से आयोजित करने की अनुमति देने के लिए ठोस आधार जरूरी। सुनवाई जारी। न्यायमूर्ति नोंग मेकापम कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने गजा पट्टी में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया। बंधकों को बिना शर्त रिहा करने का आग्रह। ओमान तट के निकट पलटे तेल टैंकर के शेष लापता चालक दल के सदस्यों की तलाश जारी। बांग्लादेश में आरक्षण सुधार आंदोलन ने आरक्षण व्यवस्था में सुधार की अपनी मांग पर जोर देने के लिए पूरे देश में बंद का आह्वान किया। और टेनिस में भारत के सुमित नागल पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना के मारियानो नवोन से खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।